अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परमानंद के ये क्षण परम सुंदर पूर्ण तप और पुरुषार्थ से भरी हुई ये सुंदर भूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम का ये सुंदर भवन जिसमें प्रातःकालीन अमृत बेला के सुंदर वातावरण में हम और आप नित्य प्रति महापुरुषों के परम पुरुषार्थ का आनंद लेने के लिए और जीवन के परम लक्ष्य के ऊपर चिंतन करने के लिए एकत्रित होते हैं। महापुरुषों का परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा आपका मन और तन इस ओर लगता है। वर्तमान में हमारा जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता भगवान की निश्चित वाणी 16वां अध्याय और उसमें जो है भगवान ने दैवीय संपदा और आसुरी संपदा का जो वर्णन किया है, क्योंकि जिस संपदा के बगैर आध्यात्मिक संसार में कुछ मिलने वाला नहीं, तो ऐसा जो ये दैवीय संपदा का स्वरूप है उसके ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। प्रथम श्लोक, अभयम सप्त संशुद्ध ही ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। हम लोगों ने कल दमह दम के ऊपर यानी इंद्रियां जो हम लोग कहते हैं, दसों इंद्रियों के द्वारा निर्मित ये हमारा आपका सुंदर शरीर, जिन इंद्रियों के भटक जाने पर हम लोगों ने श्रुतियों के उदाहरण के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से श्रुतियां कटश्रुति जो है उदाहरण देती है कि ये शरीर एक रथ है और इसमें जुड़े हुए जो घोड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी इंद्रियां ही हैं, जो पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और इन सबको लगाम लगाने वाला मन। तो ऐसा ये सुंदर शरीर, और यदि आपके घोड़े नियंत्रित हैं, यदि लगाम आपके हाथ में है यानी मन, जिसको विशेष रूप से, क्योंकि ये संपूर्ण इंद्रियों को भटकाने का और नियंत्रित करने का दोनों का कारण मन ही है, इसलिए हमारे यहां दम के संग संग सम शब्द एक रखा गया और सम की विवेचना की गई, मन का समन जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि स्वयं अर्जुन ने भगवान के सामने जो है पूर्णतया अपने आप को खोल के सामने रख दिया। महाराज चंचलम ही मना कृष्णा है प्रमादि बलभद्रणम, ऐसा दृढ़ मन है ये कि महाराज इसको बिल्कुल वायु रिव सु दुष्करम, अर्जुन कहता है कि महाराज वायु के समान इसको वश करना दुष्कर है, तो इसलिए दमन के संग संग समन जो हमारे यहां शब्द रखा गया केवल एकमात्र मन के लिए, सारा खेल मन का ही है। तो दोनों में से एक भी नियंत्रित हो जाए, अगर दसों इंद्रियां नियंत्रित हो जाएं तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, या एक मन को अगर नियंत्रित कर लिया जाए यानी लगाम हमारे हाथ में आ जाए तो इंद्रियां अपने आप वशीभूत हो जाएंगी। तो दोनों में से कोई भी काम यदि आप करने में सक्षम है या लगाम लगाने में सक्षम है, मन आपके हाथ में है तो भी इंद्रियां आपके हाथ में, घोड़े आपके हाथ में हैं, और घोड़ों के ऊपर यदि नियंत्रण है तो मन आपका जो है, जिसको भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में युक्ताहार विहारस्य के रूप में समझाया है कि यदि आपका जीवन पूर्णतया जो है संयमित है, नियमित संयमित है, पूर्णतया अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन आपके हाथ में है, और जिसका मन उसके हाथ में होता है उससे सुखी इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि मन के द्वारा भटकाए जाने पर ही ये मनुष्य संसार में भटकता फिरता है और उसकी दशा उस श्वान की तरह, उस कुत्ते की तरह हो जाती है जो सड़क में घूम घूम कर डंडे खाता है मगर भोजन खाने को नहीं मिलता। तो मन के द्वारा भटकाए जाने पर ये दशा मनुष्य की होती है सारे संसार में। कबीरदास जी कहते हैं मकर पचीसी माया कारण देश विदेश गयो, क्या देश क्या विदेश सबकी खाक छानता फिरता है ये मन केवल इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने के लिए, तरह तरह के विषयों को ग्रहण करने के लिए ये मन आपके शरीर को इधर उधर लेकर घूमता है, और अंत में वास्तविक सत्य ये है कि कुछ भी हाथ सकता, क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु, जब हमारा आपका अपना शरीर हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है तो बाकी आप संसार की किस चीज को पकड़ सकते हैं, ये स्वयं आपको कल्पना करनी है। तो दम, इसलिए हमारे यहां इंद्रियों का दमन है, पूर्णतया नियंत्रण जो है जिसको कहा जाता है, इंद्रियों का उपयोग भी करना है, विषयों का भी उपयोग करना है, सब चीजों का उपयोग जीवन में करना ही है, तभी शरीर चलेगा और तभी साधना होगी। तो इन सब चीजों का सदुपयोग करते हुए जब हम नियंत्रित जीवन जीते हैं तो वो साधनामय जीवन कहलाता है, और ये दैवी संपदा का एक बहुत बड़ा गुण है। उसके बाद हमारा चर्चा का जो आज का विषय है वो है यज्ञ। यज्ञ शब्द बड़ा जो है, जिसको कहना चाहिए व्यापक इसका अर्थ है, क्योंकि ये जितना भी संसार आप देख रहे हैं सब यज्ञ रूप ही है, और वेद की वाणी में यदि आप जाएं यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है और विष्णु ही यज्ञ है। धारण, सृजन और संहार तीन शक्तियां हैं। जिस समय धारण होता है ब्रह्मा जी का काम बिंदु मात्र समाप्त हो जाता है, और उसी क्षण से हमारा धारण प्रारंभ हो जाता है, यानी विष्णु जी का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जितना भी आप संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सब यज्ञ ही है, यज्ञ के अतिरिक्त यहां पर कुछ दूसरा नहीं हो रहा है, है ना। यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में एक अग्निकुंड होता है और उस अग्निकुंड में तमाम प्रकार की सामग्रियों की आहुति डाली जाती है ना। तो ऐसा जो यज्ञ है उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि संपूर्ण संसार में किसी ना किसी रूप में हम आहुति डाल रहे हैं। स्वयं भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, नहीं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, आपका भोजन करना भी एक यज्ञ है ना, क्योंकि यज्ञ का जो प्राप्तव्य है, फल है, वही आगे का जीवन है। इसको जो है धारण कहते हैं, भगवान के द्वारा जो धारण किया गया संसार, यानी जो स्थिति है हमारी बनी हुई, वो केवल यज्ञ के कारण है। और जो उससे भी बड़ी चीज है समझने योग्य, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं इस संसार में, वो हमारा कर्ममय यज्ञ कहलाता है, है ना। ये संसार क्या है, ये संसार कर्म यज्ञ है। तुलसीदास जी ने लिखा नहीं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार का नियम है, और इसी कर्म यज्ञ के द्वारा ये सृष्टि आगे बढ़ रही है ना। देखो जैसे जैसे कर्म, वैसे वैसे तीन प्रकार के कर्म हमारे यहां बनाए गए, सत्व, रज और तम, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामसी कर्म। तो जैसा जैसा आपका यज्ञ वैसा वैसा आपका प्राप्तव्य। अगर आप जलती हुई अग्नि में घृत डालेंगे तो क्या आएगी, सुगंधी आएगी कि दुर्गंधी आएगी, सुगंधी आएगी। अगर उसी जलती हुई अग्नि में अगर आप टायर का टुकड़ा डालेंगे तो क्या आएगा, दुर्गंधी। अग्नि वही है कि अलग है, अग्नि वही है, लेकिन जब हमने उसमें डालने वाली समिधा का रूप बदल दिया, सात्विक से राजस तामस कर दिया, तो उसमें से निकलने वाला जो प्राप्तव्य था सुगंधी दुर्गंधी रूप, उसने अपने रूप को क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। तो ये है कर्म यज्ञ, और इसी कर्म यज्ञ से है ना हम लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। जिस प्रकार से आप प्रातः काल आकर यहां बैठकर सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, अरे ये भी तो यज्ञ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन सा यज्ञ है ये, अरे यार ज्ञान यज्ञ है। कैसे ज्ञान यज्ञ है, है? क्यों भाई, कैसे ज्ञान यज्ञ है बताओ। बोले रटा हुआ है बहुत दिन से, तो बोलना ही होता बोले ज्ञान यज्ञ। आपकी जो बुद्धि है वो हवन कुंड है, बात समझ में आई, आपकी बुद्धि क्या है, हवन कुंड है, और इसमें जो है यहां पर बैठकर बोलने वाले वक्ता तरह तरह के ग्रंथों के ज्ञान के माध्यम से आपके जलते हुए बुद्धि में हवन कुंड में क्या डालते हैं, आहुति डालते हैं। तभी तो आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है कि नहीं होती, सुगंधी आती है कि नहीं आती, ज्ञान की आपके अंतःकरण में सुगंधी आती है। अब अगर इसी ज्ञान यज्ञ को देखो राजस में बदल दो, सुबह सुबह जाकर लोग पार्क में बैठते हैं, समुद्र के किनारे घूमते हैं, बोले बड़ा सुबह सुबह कैसा सुंदर वातावरण, बड़ा अच्छा लगता है ना, ये राजस यज्ञ हो गया उनकी बुद्धि में। और वहीं पर कहीं आप घरों में जाओ, सुबह उठते ही क्या शुरू हो जाती है, हाँ युद्धात्मक कार्यवाही शुरू हो जाती, आपस में ही सुबह उठते ही लोग झगड़ने लगते हैं। तो वहां पर बुद्धि रूपी अग्नि में क्या हो रहा है, तामसिक हवन हो रहा है। और इसका परिणाम सुबह से शाम तक वो लोग क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। और सत्संग करने वाला प्रातःकालीन हवन करके कैसा हो जाता, सारा दिन आपका परम प्रसन्नता से भर जाता है। तो ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है, क्या कहलाता, ये ज्ञान यज्ञ है। बुद्धि रूप हवन कुंड में जो ज्ञान की आहुतियां दी जाती हैं वो क्या कहलाता है, ज्ञान यज्ञ कहलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आप रटा हुआ मत बोल देना, बोलना होता है बोले ज्ञान यज्ञ है ना, ऐसा नहीं, हर चीज को समझना चाहिए कि शब्द निर्मित कैसे हो रहा है। यहाँ पे हवन कुंड इसी प्रकार से कर्म यज्ञ है महाराज, ये संसार रूपी हवन कुंड है। कर्म यज्ञ क्या है, इतना बड़ा हवन कुंड है महाराज, संसार रूपी हवन कुंड है। और इसमें आप जैसी आहुति कर्म की डालोगे वैसा ही आपको प्राप्तव्य मिलेगा, वही आपको मिलने वाला है। ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नियम है। तो इसके लिए अगर हम श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जो है यज्ञ का बहुत विवेचन किया है, थोड़ा बहुत नहीं किया, बहुत बड़ा विवेचन किया, तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में बड़े विस्तृत रूप से यज्ञ को समझाया है। क्यों समझाया है, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से पूरी सृष्टि ही यज्ञ रूप है ना, सब कुछ ना कुछ किसी यज्ञ का ही तो परिणाम है कि नहीं है। अरे भाई आपने ऑफिस खोला जिसको आप लोग बिजनेस कहते हैं, तो बिजनेस रूपी जब यज्ञ किया तभी तो आपको नफा नुकसान जो भी हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहां संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, इसीलिए हमारे यहां सर्व कर्म साक्षी भगवान अग्निदेव माने गए हैं ना, संपूर्ण कर्मों के साक्षी कौन है, अग्निदेव है। क्योंकि अग्नि के बगैर इस संसार की स्थिति संभव है। अरे आपकी जठराग्नि शांत तो हो जाए, भोजन हजम होना बंद हो जाए, जो कुछ आप घास कूड़ा डालते हो इसमें अगर ये हजम होना बंद हो जाए, बताओ जीवन चलेगा, वहीं का वहीं स्थिर हो जाएगा महाराज। तो कहने का तात्पर्य है कि यज्ञो वै विष्णु, विष्णु ही यज्ञ है, यज्ञ ही विष्णु है, इसीलिए सर्वम जगत विष्णुमयम। किसने कहा, वेदव्यास जी ने, वेदव्यास जी कहते हैं नहीं, सर्वम जगत विष्णुमयम, ये संपूर्ण संसार ही भगवान विष्णु का क्या है, रूप है, उस विराट का स्वरूप है। और इसमें महाराज महान यज्ञ चल रहा है, हर व्यक्ति अपनी सात्विक राजस तामसी आहुतियां डाल रहा है। और इन तीन आहुतियों के अलावा एक आहुति होती है, क्यों भाई गीता में पढ़ा आपने, इन तीनों आहुतियों के अलावा भी एक आहुति है, उसको कहते हैं निष्काम कर्म। क्या कहते हैं, हाँ निष्काम कर्म रूपी जो आहुति है, यानी होता यज्ञ करने वाला आहुति डालने के बाद, बड़ी से बड़ी आहुति डालने के बाद भी उसके बदले में कुछ भी चाहता नहीं है, इसको क्या कहते हैं, निष्काम आहुति कहते हैं। ये आहुति किसके लिए है, अरे ये आहुति हमारे और आपके लिए है। क्योंकि यहां पर आप क्या ग्रहण करने आए, परम ज्ञान जिसको आप लोग ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, निज स्वरूप की प्राप्ति कहते हैं, तरह तरह से विशेषण लगा लगा कर हम लोग उस ज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो ऐसा जब हमारा प्राप्तव्य है, हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, जो सर्वव्यापी ब्रह्म शक्ति है वो क्या है, जब आप इसको जानना चाहते हैं तो महाराज आपको इन तीनों आहुतियों से ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। एक है सात्विक आहुति, सात्विक आहुति आपको मन की प्रसन्नता देगी, लेकिन केवल मन की प्रसन्नता से आपका काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि मन थोड़ी देर प्रसन्न रहेगा और जहां जगत में कुछ दुख रूप देखा तो महाराज फिर से आपका मन क्या हो जाएगा, फिर दुखी हो जाएगा, तो आहुति जो है बेकार हो गई। तो भगवान ने गीता में अर्जुन से समझाया तीसरे अध्याय में, यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। ध्यान देना, जो सबसे बड़ी यज्ञ रूप आहुति है वो क्या है कि नित्य निरंतर 24 घंटे जो हम लोग कर्म करते हैं, है ना, जो भी कर्म आपने किया है वो आहुति ही है और उसका रिटर्न यानी आपको उसका परिणाम भुगतना ही होगा, ये निश्चय है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि इस संसार में कर्म तो कर्म, इच्छा कर लेने पर भी उसको भोगना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उस इच्छा को भोगने के लिए आपको अपनी इच्छा के अनुसार भेजे गए स्थान पर जाना पड़ता है। हम लोग ऐसी इच्छाएं कर लेते हैं महाराज, हैं कि जो वास्तविकता में इच्छा तो कर ली लेकिन ये हम भूल गए कि ये भोगना भी पड़ेगा, लेकिन जब महाराज उसको भोगना पड़ता है तब हमारी दुर्गति होती है। तो इसलिए इच्छाएं और कर्म बहुत सोच समझ के करने चाहिए। तो यहां पर भगवान ने पूर्णतया समझाने की चेष्टा की है, वेदांत के पथिक, अध्यात्म के पथिक, भगवान को प्राप्त करने वाले जो पथिक हैं उनके लिए ये सूत्र है श्रीमद् भगवद गीता में, यज्ञ क्या है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कहते हैं यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है यानी इस संसार रूपी हवन कुंड में हम जो कुछ भी परमेश्वर के आदेश से कर्म कर रहे हैं प्रभु, इसके बदले में हमको ना सुख चाहिए और ना दुख चाहिए, ये निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कठिन निर्णय है। हम निर्णय क्या लेते हैं, हमको दुख ना मिले, हमको क्या मिले, सब सबको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। लेकिन जब आप निष्काम कर्म में प्रवेश करेंगे तो वहां पर आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि ये जो आत्म यज्ञार्थ किए गए कर्म हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं ये कौन से हैं, आत्म यज्ञार्थ हैं। परमेश्वर की सृष्टि में जब हमारा जन्म हुआ है तो हम जो भी कर्म करेंगे वो सब किसके लिए करेंगे, यज्ञार्थ करेंगे, यानी परमेश्वर के सृष्टि में अलावा सहायता के मेरा कोई दूसरा भाव नहीं होगा, अपनत्व भाव नहीं होगा कि मैंने ऐसा किया है तो इसके बदले में मुझे ऐसा मिलना चाहिए। तो ये सीमा चली जाती है फिर आपके ज्ञान यज्ञ तक। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान यज्ञ में भी आपको इस आहुति की इच्छा का परित्याग करना पड़ेगा कि हमको इसके बदले में मुक्ति चाहिए। मुक्ति की चाहना भी जिस दिन हम छोड़ देते हैं कि भगवान चाहे तो हमको बंधन में रखे और चाहे तो मुक्ति दे, ये उसके ऊपर निर्भर है। जब हम भगवान के ऊपर ऐसा निर्णय छोड़ देते हैं, अपने ऊपर से निर्णय शक्ति हटा देते हैं कि हमने पढ़ा है, हमने श्रवण सुना है तो इसके बदले में हमको मुक्ति मिलनी चाहिए, यदि ये भावना आपके अंदर आ गई तो समझ जाइए आपकी निष्कामता समाप्त तो हो गई। चाहे सुनने में बड़ी अच्छी है मुक्ति की चाहना, बड़ा अच्छा लगता है कोई व्यक्ति आपसे कहे कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए केवल मुक्ति चाहिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन शास्त्र इसको सकामता मानता है, यानी हम अपनी इच्छा ईश्वर के ऊपर थोपने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि हम यज्ञ में डाल तो रहे हैं टायर और चाहते हैं सुगंधी निकले इसमें से घृत की, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी जो आप डालोगे वही मिलेगा, तो निष्कामता जब डालोगे तो महाराज उसके लिए फिर सबसे बड़ा यज्ञ जो हमारे यहां श्रीमद् भगवद गीता में गाया गया, हमारे आपके लिए जो यज्ञ है वो क्या है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। समाधिस्त पुरुष के जो कर्म हैं यानी जैसा आप सृष्टि में भगवान चला रहा है वैसे चलते हुए उसके कार्य में हाथ बटाते हुए अपने आप को निष्क्रिय मानते हुए मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, है ना। जब ऐसी धारणा हम बना लेते हैं तो हमारा कर्म ही ब्रह्ममय हो जाता है। ये विशेषता उसको प्राप्त होती है, ज्ञानवान है ना, ज्ञान का जो पथिक है उसके लिए भगवान ने ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतम, यानी सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। वहां पर अग्नि क्या, वहां पर श्रुत्वा क्या, वहां पर होमी गई आहुति क्या, होम करने वाला क्या, सब कुछ क्या है, है ना। जिस प्रकार से कुम्हार के यहां जाओ तो उसके यहां जितने बर्तन खिलौने सब क्या है, सब मिट्टी ही है। मिट्टी के अलावा वहां कोई दूसरी चीज नहीं है। नाम उनका भले हो सकता है अलग कि ये घड़ा है, ये प्लेट है, ये बर्तन है, ये राजा की सेना है, ये छोटे बच्चे के खिलौने हैं, ये पैसा जोड़ने की गुल्लक है, इतने सारे नामों से वो बट्टी बनी हुई विभक्त है। उसी प्रकार से ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा जो नित्य निरंतर परमेश्वर में स्थित होकर अपने नित्य के कर्मों को करता है। गोपिकाएं दुग्ध दोहन करती थी, गायों को पालती थी, दुग्ध निकालकर उनको बेचने जाती थी, उससे पैसा कमाती थी, लेकिन ये सारा व्यापार उनके लिए क्या था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, क्योंकि उन गोपिकाओं को कृष्ण के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो गोपिका ने दूध किसके लिए निकाला, कृष्ण के लिए। दूध किसको बेचा, कृष्ण को बेचा, और उसमें से जो अर्थ कमाया वो भी क्या है, वो भी कृष्ण है। तो जब ऐसा हमारा सर्वत्र ब्रह्म भाव या परमात्म भाव हो जाता है तो फिर हमारे कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं। कर्मों के फल को समाप्त करने का और कोई भी तरीका नहीं है, है ना। तो ये भगवान ने इसीलिए कहा यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, क्योंकि ये कर्म इतने भयंकर हैं महाराज कि एक क्षण में, आपको कल बताया था उदाहरणार्थ, राजा जनक ने केवल जो है चरती हुई गाय को हांक दिया था, क्या किया, घास खाती हुई मैदान में चरती हुई अपने महल में गाय को हांक दिया, उसके भोजन के मध्य में व्यवधान बन गए, इतने से कर्म के परिणाम स्वरूप विदेहराज जनक ब्रह्मज्ञानी जनक को भी नरक जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा, हाँ, कितनी देर का, दो क्षण का नरक मिला महाराज उनको। हाँ देखिए, ये कर्मों की गति है, कोई बचेगा नहीं। आपके सामने स्वयं उदाहरण है, किसको, भीष्म पितामह को 6 महीने किसके ऊपर सोना पड़ा, कोई कमी थी, क्यों भाई, कोई कमी थी, कोई कमी नहीं थी महाराज। सुंदर से बढ़िया से बिस्तर के ऊपर भी भीष्म पितामह को लिटाया जा सकता था, क्या कौरव क्या पांडव सब करते कि नहीं करते, लेकिन भीष्म पितामह ने बाणों की सैया को स्वीकार किया, क्योंकि वो अपने कर्मों के फल को क्या कर देना चाहते थे, पूर्णतया समाप्त करने कर देना चाहते थे। ये विवेक बुद्धि कहलाती महाराज, सबके बस का नहीं है रोग, कोई चाहेगा, इतने दिन हो गए आपको वेदांत सुनते हुए, बताओ कोई मरने के समय से बाण सैया के ऊपर सोना चाहेगा, है नहीं हिम्मत, क्यों, क्योंकि हम अपने कर्मों के फल को भोगना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं हमारे कर्मों का फल कोई दूसरा ही भोग ले, लेकिन महाराज सबको भोगना पड़ेगा, कोई भी बचता नहीं है इसमें से, है ना, क्योंकि ये शरीर है और शरीर कर्मों के द्वारा ही निर्मित है। और वास्तविक सत्य तो ये है कि हमारा आपका शरीर हमारी आपकी जड़ीभूत वासनाओं का परिणाम है, कुछ और नहीं है ये, ये जो हमारी वासनाएं जड़ी भूत हुई तब हमको आपको ये शरीर प्राप्त हुआ, तो ये कर्मों का जो परिणाम है ये हमको आपको ही भोगना है। भीष्म पितामह ने भोगा, गीता सुनने वाले अर्जुन ने भोगा महाराज, हिमालय में जाकर गलकर उसके शरीर का त्याग हुआ। ऐसा नहीं कि महाराज बड़े स्वस्थ रूप से वो चला गया अर्जुन, जिन्होंने गीता सुनी भगवान के श्रीमुख से। तो इसलिए चेतावनी दी है शास्त्र ने, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अगर जीते जी इन कर्मों से मुक्ति चाहते हो तो बोले महाराज इन कर्मों को यज्ञार्थ भगवान को अर्पण करते जाओ, कि तुम जैसा करा रहे हो वैसा मैं कर रहा हूं, बस यही मेरा एकमात्र ध्येय है इन कर्मों के प्रति। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपके व्यर्थ के कर्म छूट जाएंगे, फिर आप फालतू काम करोगे ही नहीं, क्योंकि सब आपको ही भुगतना है महाराज, बचने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इन कर्मों से बचने का तरीका ये है कि इनको आत्मयज्ञार्थ करते जाओ और मुक्त संग समाचार। हे अर्जुन, अगर तुम बिल्कुल जीवन में मुक्ति का आनंद लेना चाहते हो, बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो इन कर्मों को मोड़ दो, आत्मयज्ञार्थ करने लगो। इतना सुनाने के बाद भगवान ने जो है उसके बाद बताया, वास्तविकता में जो आपको तरीका बताया था पहले दिन ही, मूल, जब हम अपने मूल से जुड़ते हैं तो देखा गया क्यों यज्ञार्थ कर्म क्यों करने, क्यों कर्म तो करने ही है, सबको करने है महाराज, है ना, खाना पीना पहनना ओढ़ना जो सारा व्यापार है आपका, दिन भर कर्म का ही व्यापार है महाराज। एक छोटी सी चिड़िया भी 4 बजे से लग जाती है, देखो दाना ढूंढने के लिए चालू हो जाती कि नहीं हो जाती, एक छोटी सी चिड़िया भी महाराज कर्म करती है। और सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि मनुष्य के अलावा सारी दुनिया निष्काम कर्म करती, कोई चाहना नहीं है उनकी अपने कर्मों के प्रति अलावा मनुष्य के। और मनुष्य इतना छोटा सा भी कर्म करता है तो उसके बदले में इतने बड़े फल की क्या करता है, आशा करता है कि हम सत्संग करते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए। अब बताओ, हमने इतना बड़ा एहसान भगवान के ऊपर कर दिया कि अब भगवान को हमारे जीवन में कोई कष्ट भेजना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं तो महाराज कहानी कुछ और ही नजर आती है। गीता सुनने वाले अर्जुन के नवयुवा पुत्र की क्या हुई, क्या हुई, अभिमन्यु की मृत्यु हुई कि नहीं हुई, हुई। राजा हरिश्चंद्र के संग क्या नहीं हुआ, प्रहलाद के संग क्या नहीं हुआ महाराज। तो ये भ्रम निपटाने के लिए ही तो ये सारी कथाएं रखी गई हैं इन ग्रंथों में, जिससे हम ये निर्णय कर सके। नहीं तो लोग गलत रास्ता सोच लेते हैं अपने मन में कि बस हम आध्यात्मिक हो गए तो अब हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, अगर कष्ट आया तो भगवान अगवान सब क्या है, सब बेकार की बातें। क्यों भाई, इतना फास्ट निर्णय लेता है मनुष्य, है ना, बोले अगर भगवान ने मेरा काम किया तो ठीक और नहीं तो भगवान है ही नहीं, बेकार, सब बेकार की बातें। कोई सत्संग, बहुत से लोगों को आप मिलेंगे, आपको पुराने पुराने सत्संगी मिलेंगे महाराज, जिन्होंने 40-40 बरस सत्संग किया, उनसे पूछो जाके, बोले अरे सब बेकार, कुछ नहीं, सब बातों में कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि उन्होंने शास्त्र को समझने की चेष्टा नहीं की। तो जरा मूल को पकड़ने की चेष्टा करें, यज्ञ के ऊपर बहुत विचार करने वाली चीज है, क्योंकि जिस दिन आपका जीवन ब्रह्म यज्ञमय हो जाएगा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणावतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, कर्म करते हुए भी आपका जीवन परम मुक्ति का आनंद कैसे ले, इसको भगवान ने सृष्टि क्रम के अनुसार समझाने की चेष्टा की है। हमारे यहां किस प्रकार से सृष्टि प्रारंभ की भगवान ने, स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वद्धम एषवोस्तिष्ठ कामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता श्रेया परमवाप्यशत ईष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा यज्ञशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषये भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। कहते हैं इस प्रकार से जो ये चक्र चल रहा है, बहुत सुंदर तरीके से हमारे यहां समझाया गया। देखो कैसा चलता है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीयया अघायुरिंद्रियारामो मोघं पार्थ सा जीवति। अगर आपने ये श्लोक समझ लिए तो आपको इस शरीर में जीवन मुक्ति के आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा केवल मैं मेरा करते रहोगे, चाहे वेद पढ़ डालो चाहे वेद को घोल के पी जाओ, मैं मेरा अगर नहीं छूटा तो महाराज कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, पुरातन काल में जो है ब्रह्मा जी ने यज्ञ के संग इस सृष्टि की रचना की, हमारी उत्पत्ति यज्ञ के द्वारा मानी गई है ना। और जिस समय इस मैथुन सृष्टि की रचना उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यानी सृष्टि के विस्तार के लिए उन्होंने इस यज्ञ की रचना की, क्योंकि इन यज्ञों के माध्यम से हम किसको प्रसन्न करते हैं, बोले देवताओं को। देवान भावेतानेन ते देवा भावयन्तु वः, इस यज्ञ के द्वारा, क्योंकि परस्पर कोई भी वस्तु परस्पर होती है, जैसे साइकिल जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं साइकिल होती है ना, किसी चक्र होता है, चक्र क्या है, जैसे आप जो है पानी आपके यहां जो जल आता है और वही जल गटर के रास्ते पुनः जो है प्रोसेस में चला जाता है और फिर से उसी जल को वो ट्रीट करके शुद्ध करके फिर से आपके जो है वाटर टैंक में म्युनिसिपैलिटी विभाग भेज देता है ना। तो इसको बोलते हैं चक्र, इसको बोलते हैं साइकिल। वही पानी जो हम व्यर्थ करते हैं वही समुद्र में जाकर पुनः आकाश से बरसकर हमको बारिश के रूप में मिलता है। अगर नीचे जल नहीं होगा तो ऊपर से भी बारिश होने वाली नहीं है, चक्र समाप्त हो जाएगा। तो आपको बताया था हर इंद्रिय का एक देवता है, और जब तक ये देवता बलिष्ठ नहीं होंगे आपकी इंद्रियां भी बलिष्ठ नहीं होंगी। आप देख रहे हैं हर दूसरे आदमी को डायबिटीज है, लगभग हर दूसरा आदमी जो है बीपी का शिकार है, ना जाने कितनी बीमारियां, ये सब क्या है, ये सब हमारे आपके देवताओं की दुर्दशा का परिणाम है। जो हमने देवताओं को खिलाया पिलाया है देवता भी वही बदले में हमको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, और परिणामतया हमारा आपका जीवन बिल्कुल क्या बन गया, साक्षात नरक की अवस्था में पहुंच गया। महाराज जाकर के हॉस्पिटल में देखो, जाकर पड़े हुए हैं लोग महाराज, कोई बेड पे पड़ा है, कोई सड़क पे पड़ा है लेके मरीज को, दुर्दशा। देवान भावैतानेन ते देवा भाईवंत, तुम इन देवताओं को बलिष्ठ बनाओ, इन देवताओं को शुद्ध बनाओ, और उसके बदले में ये देवता तुमको बलिष्ठ और स्वस्थ बनाएंगे। परस्परम भावयंता, जब तक तुम्हारे देवता शुद्ध नहीं होंगे, जल देव वायु देव अग्निदेव ये शुद्ध नहीं होंगे, तब तक तुम भी शुद्ध होने वाले नहीं हो। श्रेया परम वापिशत, अपने परम कल्याण को प्राप्त करो। यहां जो सबसे बड़ी बात है समझने वाली कि ये यज्ञ किस लिए है, ये यज्ञ है कर्म यज्ञ, हमारे आपके सुंदर कल्याण का जो मार्ग निस्वरूप की प्राप्ति का मार्ग है उसकी प्राप्ति के लिए है। और एक बहुत सुंदर बात यहां पर बताई गई, देखो इस गीता को पढ़ने वाले भी जब भिकमंगे के रूप में दिखाई देते, ईष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंगते इस्तेन एव सह। भगवान कहते हैं यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र काम के लिए यज्ञ कराया गया और जब महाराज उस यज्ञ को सुव्यवस्थित रूप से किया गया तो वहां पर श्रृंगी ऋषि को यज्ञ भगवान से याचना नहीं करनी के पड़ी कि प्रभु हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया, अब आप हमको जो है पुत्र के लिए कुछ लेके प्रकट हो। जब वो यज्ञ पूर्णतया परिपूर्ण हो गया तो स्वयं ही उसके अंदर से अग्निदेव एक सुंदर चरू लेके निकले, खीर का कटोरा लेके निकले और राजा दशरथ को उससे पुत्रों की प्राप्ति हुई। यदि आपका यज्ञ यानी कर्म यज्ञ है, इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ के भाव से जिन देवताओं का आपने यजन किया है, जैसा जैसा आपका यज्ञ होगा उसी प्रकार से वो देवता उन भोगों को बिना मांगे, दास्यन्ते बिना मांगे ही आपको देंगे, आपको इसके लिए उनसे किसी प्रकार की याचना नहीं करनी पड़ेगी। ये है सनातन धर्म। यहां मांगने का काम नहीं है, शास्त्र कह रहा है तुम अपने कर्तव्य में कर्म में यदि निश्चित हो तो फिर तुमको किसी प्रकार से कहीं याचक बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी सनातन धर्म के लोगों को मंदिरों में महाराज अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लाइन में घंटों लगे हुए देखा जाता है। महाराज किस लिए जा रहे हैं मंदिर? इच्छा पूर्ति के लिए। फलानी जगह जा रहे हैं, दिमाग की जगह जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या घुटने के बल चल के महाराज करता है ये इंसान, किसके लिए? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो यहां पर भगवान ने देखो कितना सुंदर रहस्य स्पष्ट किया है कि यदि आपका यज्ञ बिल्कुल सही है तो आपको देवताओं से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। कहते हैं इष्टानि भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से बढ़ाए हुए होने के कारण वो स्वतः तुमको जो है कि वो भोग देंगे। जैसे यदि आप 5-स्टार होटल के अंदर जाएंगे तो वहां निश्चित है, पहले से ही निश्चित है महाराज कि आपको बैठने के लिए सुंदर सा महाराज फर्नीचर मिलेगा। ऐसा तो नहीं 5-स्टार होटल के अंदर जाओ वहां टूटी हुई कुर्सी पड़ी होगी हैं? तो जब आपके देवता पुष्ट होंगे तो आपको फिर भोगों को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पुनः अपने आप वो आपको भोग प्रदान करते रहेंगे। और जब ऐसे भोग आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि जैसे आपके देवता वैसे भोगों की सामग्री, आपको मालूम है हैं? इतने बड़े बड़े राजा युधिष्ठिर ने जिस राजसू यज्ञ को किया, और एक राजसू यज्ञ में अरबों रुपए का खर्चा होता है। कितना? अरबों रुपए का खर्चा। राजा मरुत के यज्ञ से बचे हुए ब्राह्मण लोग जो अपना सोना छोड़ गए थे सड़क में कि जो मर्जी उठा ले जाए, इतना स्वर्ण राजा मरुत ने छोड़ दिया था, ब्राह्मणों ने छोड़ दिया था, उठा के ले नहीं जा पाए। उस बचे हुए धन से महाराज राजा युधिष्ठिर का राजसू यज्ञ संपन्न हो गया। जरा कल्पना करो, इतना स्वर्ण भंडार आपके पास था नहीं, आज भी है, आज भी है भारत में, बोलो, जिसको हम जानते नहीं। और वही देश आज भिकमंगों की तरह जब लाइन में लगे हुए देखे जाते हैं, लोग पैदल पदयात्रा करते हुए देखे जाते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ऐसा हो जाए तो पैदल आएंगे, ऐसा हो जाए तो आपके दर्शन करने आएंगे। तो ये भिकमंगों का जो साम्राज्य स्थापित हुआ हमारे यहां, ये हमारा जो क्रम था उसको बदलने के कारण हुआ है ना, हम भिकमंगे बन गए, वास्तविकता में ये हमारी स्थिति थी नहीं। तो उसके बाद जब आपको ये भोग प्राप्त हो जाए, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तुगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। ऐसे यज्ञ से बचे हुए यानी जो ये यज्ञ आपने कर्म यज्ञ किया है, इससे बचने के बाद जो आपको भोग प्राप्त हुए हैं, पहले उन भोगों को दूसरों को खिलाओ और उसके बाद फिर खुद उनका क्या करो, उपयोग करो। इस प्रकार से आपका जीवन यज्ञमय हो जाएगा। जरा बिल्कुल दिल से बताओ, जब तुम कमाते हो पहले अपने लिए करते हो या दूसरे के लिए हैं? बोलो, वेदांत में कुछ मिलेगा? भगवान के रास्ते में कुछ मिलने वाला है? कार्य ही उल्टे हैं, रास्ता ही उल्टा है। जब सब कुछ हमने उल्टा चुन रखा है महाराज, तो सीधा कहां से होगा? कहते हैं पहले हमारे, आज भी आप जाओ पंजाब क्षेत्र में, यदि आप जाएं तो वहां पर किसान जो 6 महीने खेत में मजदूरी मेहनत करता है, आपको मालूम है जब उसकी फसल कट के तैयार होती है तो एक बोरी, जिसके पास जैसा भी हिसाब किताब है खेतों का, एक बोरी, दो बोरी, चार बोरी, 10 बोरी, जो भी उसको गेहूं जो है दान करना होता है, तो सबसे पहले वो दान निकालता है महाराज। हरिद्वार में जो आश्रम है या जो भी अन्य क्षेत्र चलते हैं उनके लिए महाराज, पहले वो अपनी मेहनत में से वो फल निकाल के अलग रखते हैं, उसके बाद वो अनाज मंडी में जाता है। आज भी ये परंपरा वहां पर है, जो हमारी सनातन परंपरा है। यानी जो भी भोग प्राप्त आपको हुए हैं, पहले उनको दूसरे को क्या करो, बांटो। भगवान अपने घर का भी मक्खन अपने ग्वाल बालों को खिला देते थे, हैं? तो जब बांटो तो उससे क्या होगा, उससे तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। और यदि उन सारे भोगों का उपयोग खुद ही करने लगे और थोड़ा बहुत किसी को महाराज कुछ सहायता कर दी, सहायता के रूप में या दान के रूप में, तो ये तो क्या कहलाता है, भुंजते ते तुगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, ये तो अपने पापों को स्वयं खाने की अवस्था है। हम अपने पापों को स्वयं ही खा रहे हैं जो केवल अपने लिए जी रहा है। भगवान ने इसलिए बिल्कुल शुद्ध रूप में, ये तो मुक्ति की चाहना वालों के लिए अवस्था है महाराज। और जो वास्तविक सत्य है वो ये है, अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्याद अन्न संभवा। हमारा आपका शरीर, इसीलिए आपने तैत्तरीय श्रुति कभी सुनी हो इस मंच से, तो वहां पर बताया अन्न को साक्षात भगवान माना गया है। अन्न क्या है? अन्न देवता है कि नहीं है? क्योंकि अन्नदान महादान माना गया, अन्नदान साधारण दानों में नहीं गिना जाता, और इसमें ना तो पात्रता देखी जाती है, ना देश देखा जाता है, ना काल देखा जाता। कभी भी किसी को भी, दुश्मन को भी आप अन्नदान कर सकते हैं, तो वो महादान में आता है। क्योंकि अन्नात भवन्ति भूतानि, अन्न के बगैर ये सृष्टि संभव नहीं है। अन्नात भवन्ति भूतानि, अन्न से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और ये अन्न कहां से आता है? कहते हैं परजन्यात। परजन्यात यानी बारिश। अगर जल ना हो तो अन्न की संभावना भी नहीं रहती। अन्नात भवति भूतानि परजन्याद अन्न संभवा यज्ञात भवति परजन्यो। हाँ, ये जो बारिश है वो किसका कारण है? कहते हैं यज्ञ का। बोले यज्ञ क्या है? तो कहने लगे यज्ञ कर्म समुद्भवा। ये आपके अपने कर्मों का परिणाम है, देख रहे हैं ना? हमारे आपके कर्मों ने संपूर्ण सृष्टि चक्र को बदल के रख दिया है। कभी बारिश ज्यादा, कभी कहीं कम, कहीं ज्यादा, अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी हमारे अपने कर्मों ने। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान ने तो यहां स्पष्ट सृष्टि चक्र का वर्णन किया है कि ये सृष्टि चक्र चलता कैसे, यज्ञ क्या है, है ना? तो यज्ञ कर्म समुद्भवा। और जब उसके बाद बोले महाराज ये कर्म कहां से, तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ये कर्म कहां से आए? बोले महाराज ब्रह्म से। बोले ब्रह्म कहां से आया? बोले अक्षरम, अक्षर से। कभी ना क्षय होने वाला जो परम सनातन तत्व है, उससे महाराज जो है, जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं, परमार्थ सत्ता कहते हैं, उसका उदय हुआ, उससे ये कर्म उत्पन्न हुए हैं। और उन कर्मों से महाराज आपका ये सृष्टि चक्र चल रहा है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यानी जितना भी ये यज्ञ रूप सृष्टि चक्र है, इसमें हर समय वो ब्रह्म तत्व उपस्थित है। तब जो है उसने कहा कि महाराज मैं जहां भी देखता हूं परमेश्वर के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई, हाँ, तब जाकर आपका वो श्लोक सिद्ध होगा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नौ मृणाउतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ध्यान दीजिएगा, रहीम दास जी, उनको वेदांत समझ में आ गया, हमको पढ़ के नहीं समझ में आया, उनको बिना पढ़े समझ में आ गया, मुस्लिम थे हैं। लेकिन महाराज जब उनको कविता के ऊपर प्रसन्न होकर बादशाह सोने की सरफियां चांदी के सिक्के उनको देते थे, तो सुबह सुबह प्रातःकाल उस सारे धन को लेके बैठ जाते थे और उनके घर के आगे, झोपड़ी के आगे महाराज बड़ी लंबी लाइन लगी होती थी, उसमें चोर डाकू हैं, साधु महात्मा सब लाइन में लगे होते थे जिनको धन की अपेक्षा होती, साफ खड़े होकर इंतजार करते थे। और रहीम दास जी डंडा लेके लाइन नहीं लगवाते थे कि साहब लाइन से खड़े हो जाओ, है ना, डंडा लेके लाइन नहीं लगवाते थे कि महात्मा आगे खड़े हो, चोर उसके पीछे खड़े हो, उसके पीछे, ऐसा कुछ नहीं, जो जहां लगा है वो लगा हुआ है, चोर आगे लगा है तो, महात्मा आगे लगा है तो, कोई भी लगा हुआ है लाइन में, आंख बंद कर लेते थे और पैसा जो है देते जाते थे, जहां खत्म हो गया हाथ जोड़ देते थे, महाराज बस आज की सभा यहीं समाप्त, क्योंकि रहीम का ब्रह्म हर जगह है, चोर में भी है, डाकू में भी है, शैतान में भी है, वैश्या में भी है, अमीर में भी है, गरीब में भी है, किस में ना देखें। तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितम् चक्रम् नानुवर्तयति या अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम् पार्थ स जीवति। ये जो सृष्टि चक्र है उसके बारे में बताया गया है, कहते हैं प्रवर्तितम चक्रम, प्रचलित सृष्टि चक्र है, और जिस जो इसके अनुसार नहीं जीता है, अघायुर इंद्रिया रामो, इंद्रियों में रमण करने वाला, इंद्रियों को सुखों को ढूंढने वाला, वो केवल अपने पाप रूपी जीवन के बोझ को ही ढोता है। मोघम पार्थ जीवति, हे पार्थ, उसका जीवन जीवन नहीं, केवल भार मात्र है, पाप मात्र है। तो इंद्रिय में रमण करना नहीं, ब्रह्म में रमण करना हमारा स्वभाव होना चाहिए। समय समाप्त हो चुका है, इसी क्रम को कल आगे फिर बढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान ने चौथे अध्याय में फिर यज्ञ की बहुत सुंदर विवेचना की। हमारा जीवन ही यज्ञ है, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब यज्ञ है। जिस दिन ये यज्ञ की कीड़ा समझ में आ गई, उसी दिन आपका ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्मागनो ब्रह्मणाउतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, आप समाधिस्थ स्थिति में आ जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद गण भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।